मदर्स डे की शुभकामनाएं। हमारी ग्रंथों में, विशेषकर तैत्तिरीय उपनिषद में, जब बच्चे दीक्षांत समारोह में जाते हैं, पूरी पढ़ाई हो जाती है, तो उनको एक शिक्षा का निचोड़ बताया जाता है, जिस्ट ऑफ द एजुकेशन, तो उसको शिक्षा वल्ली बोलते हैं। बच्चे को उपदेश दिया जाता है, बच्चे तो बड़े हो गए, 22, 24, 25 साल के, उसको समावर्तन संस्कार बोलते हैं। वो कहा जाता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अब तुम घर लौटने वाले हो तो माता पिता को अपना देवता समझना, जिन आचार्यों से दूर जा रहे हो उनको भी, और जो विद्वान तुम्हारे घर आए कभी तो अतिथि देवो। तो माँ के बाद बच्चे के लिए पिता का स्थान बहुत बड़ा होता है। पिता का अर्थ होता है जो हमें दुखों से दूर कर सके। पितृ पालन यो, जो हमारा लालन पालन भी करता हो, दुखों से दूर करता हो और सुख देने वाली वस्तुओं से प्राप्त कराता हो। तो देखिए, ये जीवन का कुछ विचित्र खेल है कि एवरी मैन मे नॉट बी ए गुड पर्सन, बट एवरी फादर इज ए वेरी गुड पर्सन, एवरी फादर इज ए देवता। तो यह हमें थोड़ा रहस्य समझना होगा। और आज जब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्र पर देखेंगे, ध्यान देंगे, तो वही सारा रहस्य इस संसार में है। बोलने में जैसे कहा मैंने कि मेरी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं, सबकी दो आंखें हैं, पशुओं की, पक्षियों की भी दो आंखें हैं। नाउ इफ आई ट्राई टू मेक ए बिग एज इफ इट इज माई अकॉम्प्लिशमेंट कि मेरी दो आंखें हैं, आई एक बहुत बड़ी चीज है, तो आप कहेंगे इसमें आपकी क्या बड़ाई हो गई, what is so great in it, because it is natural. जब कोई चीज natural है तो you have not acquired it out of your own great efforts. ये तो परमात्मा ने आपको दिया। तो वही बात कि every man may not be a good person, but every father is a devata. Even a criminal is a devata when he is in his home interacting with his child. तो यही बात हुई कि यह जो पिता का देवत्व है वो परमात्मा की देन है, वो हमारी अपनी कोई कमाई नहीं है। मैं कोई बात को छोटी नहीं कर रहा, पिता का देवत्व बहुत बड़ा है, माँ का देवत्व बहुत बड़ा है, पर हमें थोड़ा पीछे सोचना पड़ेगा कि ओवरनाइट एक महिला मां बन गई और देवत्व आ गया उसमें, एक पुरुष पिता बन गया, अब उसके अंदर अपने बेटे के प्रति देवत्व का भाव है। देवत्व का भाव किसे कहते हैं, ये भी बड़ी समझने की चीज है, क्योंकि द होल वर्ल्ड फंक्शंस ऑन गिव एंड टेक। ये इंग्लिश में भी बड़ा अच्छा बोला, गिव एंड टेक, ये लोग टेक एंड गिव नहीं बोलते, गिव पहले आया है, टेक बाद में आता है। तो ये बात को समझना होगा, द होल वर्ल्ड फंक्शंस एज गिव एंड टेक रिलेशनशिप। आप बाजार में जाते हैं, किसी स्टोर को आपने दुकानदार को $10 दिए, $10 की चीज ले ली, आप भी खुश हैं, वो भी खुश है, पर समझिए उसने आपको धोखा दे दिया, $5 की चीज आपको $10 कह के दे दी, आप घर आए चीज बिगड़ गई, आपको पता चला ये तो उसने ठग लिया, तो आपके मन में उसके प्रति दुर्भावना आएगी कि वो अच्छा आदमी नहीं था, वो दुकानदार अच्छा नहीं है, क्योंकि गिव एंड टेक का समीकरण बराबर नहीं रखा उसने 10 ले लिया और 5 की चीज दी है आपको। तो गिव एंड टेक यदि बराबर का हो तो हम बोलते हैं ही इज ए नाइस मैन, अच्छा मनुष्य है। और एक समाज में जहां सब ऐसे हों वहां सब अच्छे हैं, लेकिन परमात्मा के डिजाइन कुछ अजीब सा है। परमात्मा का एक मंत्र आता है, मुझे लगता है यहाँ इतने अच्छे अच्छे मंत्र लिखे हैं, ऋग्वेद का वो मंत्र है वो भी लिखा होगा, तंतुम तनवन रसो, बड़ा अच्छा मंत्र है। इसकी एंडिंग है मनोर्भव जनया देव्यम जनम। परमात्मा मुझे कह रहा है, हम सबको कहता है कि देखो तुम्हें मैंने मनुष्य के शरीर में भेजा है, लेकिन मनुष्य बनना पड़ता है। ये धातु भाव धातु थोड़ी विचित्र है और थोड़ी बातचीत से समझ में नहीं आती कि कोई मुझे क्यों बोल रहा है कि मनुष्य बनो, क्या मैं मनुष्य नहीं हूं क्या? परमात्मा का कहने का मतलब है तुम्हें मैंने मनुष्य के रूप में संसार में भेजा है तो कम से कम मनुष्य जरूर बनना, यानी कम से कम गिव एंड टेक का इक्वेशन बराबर रखना, जिससे जितना लो उसको उतना ही दो, उससे कम मत देना। ये परमात्मा का आदेश है। भव इंग्लिश में हम कहेंगे यू हैव टू बिकम ए ह्यूमन बीइंग। आज के जमाने में ह्यूमन राइट्स की बड़ी चर्चा हो रही है। हमारा वैदिक दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट है कि ओनली इफ यू आर ए ह्यूमन बीइंग यू हैव ए ह्यूमन राइट्स। यदि आपने गिव एंड टेक का बराबर पालन नहीं किया, आपने किसी और की तो गर्दन ऐसे ही साफ कर दी और आप चाहते हो कि आपके साथ ह्यूमन राइट्स का बर्ताव किया जाए, वो नहीं होना। तो हमारा ह्यूमन बीइंग के बारे में दृष्टिकोण दूसरों से थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं मनोभाव, मनुष्य बनना पड़ता है, इसीलिए हम शिक्षा के दौर से जाते हैं। अब इतनी लंबी कहानी में क्यों बोल रहा हूं, बात है फादर्स डे की। तो यहीं पर मनुष्य समाज एक विचित्र समाज है, ये सब हम नहीं समझेंगे तो हम जो इसका ग्रैंड डिजाइनर है उसको नहीं समझ पाएंगे। बाकी जितने पशु पक्षी प्राणी जगत में है, ए काउ इज ए काउ, ए डॉग इज ए डॉग, ए लायन इज ए लायन, टाइगर इज ए टाइगर, ए एलिफेंट एलिफेंट, यानी वो जो हैं वो हैं, उसके अलावा वो कुछ बन भी नहीं सकते। गाय घोड़ा नहीं बन सकते, गाय देवता भी नहीं बन सकते, राक्षस भी नहीं बन सकते, लायन भी जो है वही है। लेकिन मनुष्य कुछ ऐसा है कि वी आर कमिंग विद ए लॉट ऑफ फ्रीडम एंड देन आई कैन बिकम एनीथिंग आई वांट टू बिकम। वी आर इन ए लेवल फील्ड, हम ऊपर भी खूब ऊंचाई पर जा सकते हैं और नीचे भी बहुत अपना पतन कर सकते हैं। तो क्या कहा परमात्मा ने, मनोभव जनया, जनया यानी टू जनरेट, जन्म देना, दैव्यम दिव्यता को, जनया दैव्यम जन्म, जन्म दो अपने अंदर दिव्यता को, देवत्व को। कम से कम मनुष्य तो बनकर दिखाना, डोंट लेट मी डाउन, लेकिन हो सके तो ऊपर चढ़ना देवत्व को। अब मैंने कहानी शुरू की गिव एंड टेक से, तो मनुष्य कौन है जो जैसा लेता है उतना ही दे देता है। हम सब भी समाज में, मैं भी पहले कोशिश करता हूं कि भाई उन्होंने मुझे शाम को खाने पर बुलाया था, हम भी तो बुलाएं उनको, कोशिश तो करता हूं, लेकिन मैं भी कभी कभी इसमें गड़बड़ हो जाती। पर हम सबका व्यवहार आपस में ऐसा ही है, होना भी चाहिए। लेकिन देवत्व का व्यवहार क्या है कि देना और देने में अच्छा लगना। ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लगती है, आप जब ध्यान से सोचें तो बड़ी गजीब सी बात है। हम सारा मानव समाज संसार में दौड़ भाग में लगा है टू एक्वायर टू ग्रैब, सब पाने के लिए लगे हुए हैं। बिजनेस वाला भी खोल रहा है तो अधिक से अधिक कमाना चाहता है, कोई भी अधिक से अधिक कमाना चाहता है। यदि ईमानदारी से है तो किसी को कोई शिकायत नहीं है, इट इज ऑल इन द मनुष्य के व्यवहार में आ जाता है। लेकिन देवता देखिए कितना विचित्र है कि वो देना चाहता है, बदले में कुछ नहीं चाहना, खाली गिव एंड नो टेक, और देने में उसको अच्छा भी लगता है। बड़ी विचित्र बात, लेकिन परमात्मा का एक ऐसा डिजाइन है कि द डे यू बिकम ए फादर और यू बिकम ए मदर, यू बिकम ए देवता एटलीस्ट फॉर योर चाइल्ड। सोचिए जरा गंभीरता से ये परमात्मा का डिजाइन बहुत विचित्र है। एवरी ह्यूमन बीइंग को मनुष्य क्या देवता बना ही देता है। फिर वो देखता है कि तुम अपने घर से बाहर निकले हो, अब दूसरों के साथ तुम्हारा कैसा व्यवहार है। तो वो जो बड़ा देवता है, जो मातृ देवोभव पितृ देवोभव को भी देवता बनाता है, वो सबसे बड़ा पिता है, महादेव है। और यही उसका डिजाइन समझ कर हम इस जगत को समझें और इस जगत के बनाने वाले को समझें, उसके पास जाएं। अदरवाइज वी हैव कम इन दिस वर्ल्ड, वी कैन लिव इट लाइक इन अ होटल, चेक इन कर लिया, एक दिन चेकआउट करना ही पड़ेगा और चले गए। दैट्स हाउ यू एंटर इन टू ए होटल, यू गेट आउट ऑफ इट। बहुत ज्यादा हुआ, थोड़ा थैंक यू वगैरह बोल दिया, लेकिन होम इज वेरी डिफरेंट। होम में कोई बिल नहीं आता, यू डोंट हैव टू पे एनी बिल, बिकॉज एवरी स्मॉल थिंग इज प्राइसलेस, यू कैन नॉट मेक ए प्राइस। मैं भी अपनी कभी क्लास में बोलता हूं, उपासना और ये सारा खेल मैंने 4 सप्ताह तक आपके घोट घोट कर आपको पिलाना चाहता हूं, उपासना, ईश्वर उपासना, ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के बहाने से हम क्या कहना चाहते हैं। मैं एक बार क्लास में बोल पड़ा कि तुम उसका कैसे धन्यवाद दोगे। यू बाई ए बनाना फॉर 10 सेंट्स, 15-20 सेंट्स, दैट इज द प्राइस ऑफ दैट बनाना। लेकिन आज हम यहां के प्रेसिडेंट को बोलें कि एक ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलो जहां रिसर्च साइंटिस्ट गेट टुगेदर एंड प्रोड्यूस 1 बनाना। 10,000 साइंटिस्ट, 1,000 और इवन आई विल से हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस 1 बनाना। दैट इज द प्राइस ऑफ बनाना। If you live in the world like you live in a home, Paramatma ki every gift is priceless. But if you are cultured towards money and you value everything with money, then your life in this world will be living in a hotel. Pura jeevan aapka beet jayega, aapko kuch samajh mein hi nahi aayega. Ye jeevan ka rahasya, aap samajhna chaho to ek kshan mein samajh sakte ho. To yahi hai. उस पिता के हम संतान है, बहुत अच्छा मंत्र है ऋग्वेद में, त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतकतो बभूविता अधाते सुम्न मीम हे। वो कैसा कैसा पिता है, वो अपने अच्छे गुण हमारे अंदर एम्बेडेड करके डाल देता है, इंस्टिंक्टिव डाल देता है कि हम भी एक साधारण सा मनुष्य, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की है, खेला चलाता है, एड़ी चलाता है, जो भी कहता है, लेकिन जब वो पिता बन जाता है, वो भी देवता बन जाता है। ये उसकी करामात है, उसी को हम समझना चाह रहे हैं। इस जो मंत्र मैंने सोचा, मुझे आज और अगले 3 रविवार 4 सप्ताह हैं आपके सामने में, 4 सप्ताह में जो ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के हम 8 मंत्र बोलते हैं, आप सबको याद भी होंगे क्योंकि हवन के पहले वही बोला जाता है। ये हमारे ऋषियों ने ऐसा कह दिया है कि 8 मंत्र का एक छोटा सा पैकेज दे दिया है कि तुम चाहे जो भी बिजनेस करो, जो भी प्रोफेशन करते हो, इस 8 मंत्र को तो सोच समझ कर ग्रहण कर लो। और इसको आपने ग्रहण कर लिया तो आपको बहुत अमूल्य निधि मिल जाएगी, आपके जीवन को सही दिशा मिल जाएगी। तो ये ईश्वर को समर्पित है, ऐसा कुछ नहीं है कि ईश्वर को बहुत मजा आता है जब आप ये मंत्र बोलते हैं, वो तो पूर्ण मदर है, वो तो सैचुएटेड स्टेट पर है, उसको मैं गाली भी दूं तो फर्क नहीं पड़ता, उसको मैं कुछ रिझाऊं भी तो फर्क नहीं पड़ता। ये जब हम कहते हैं तो अपने भले के लिए कहते हैं। तो इसके 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से होते हैं हर चीज के। पतंजलि ने लिखा, जप का क्या, तज जपस तदर्थ भावनम, शब्द अर्थ और भाव। आपने मंत्र बोला, ये हो गया मंत्र का शब्द बोल दिया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश करेंगे, अधिक से अधिक मैं आपको क्या कम्युनिकेट कर सकता हूं, मंत्र का अर्थ। लेकिन अंत में आया मंत्र का भाव, अब भाव तो तभी आएगा समझ में जब परमेश्वर परमात्मा की आपके ऊपर कृपा हो, और वही बहुत आवश्यक है। जब श्रद्धानंद जी जिनका यहाँ चित्र बना हुआ, मुंशी राम थे, कॉलेज में पढ़ते थे, बिगड़ा हुआ बेटा था, कहानी में ज्यादा जाना नहीं चाहता, उनके पिता का नाम नानक चंद, वो पुलिस अधिकारी थे, बरेली में स्वामी दयानंद जी के व्याख्यान हो रहे थे, तो जैसा होता है बड़ी भीड़ होती है तो पुलिस वालों को भेजा जाता है, इसको भारत में एक शब्द है बंदोबस्त, बंदोबस्त के लिए भेजा गया। तो नानक चंद भी एक पुलिस अधिकारी 6-8 सिपाही लेकर पहुंच गए दयानंद जी के व्याख्यान, एक दिन नहीं कुछ दिनों की श्रृंखला थी, बैठे हुए हैं कोने में पुलिस वाले लोग आपस में बैठकर चर्चा करें, पर नानक चंद जी को लगा कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है कुछ अच्छी बात बोल रहा है, और उनका लड़का तब तक काफी बिगड़ चुका था जिसका नाम था मुंशी राम, 24-22 साल का था, पढ़ाई कॉलेज की कर ली और दिन भर अंग्रेजी के उपन्यास पढ़ता था सारा दिन, और वही समझता था दैट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, इंग्लैंड वालों ने लिखा है, गुलामी के दिन थे, अंग्रेजों ने जो कहा जो लिखा वो बहुत सबके से माथे पर, तो उन्होंने कहा हाईएस्ट लेवल ऑफ लिटरेचर ये जो उपन्यास आ जाते थे वहां से, और इंग्लिश वो सीख ही गया था, इंग्लिश के उपन्यास पढ़ते थे, बड़ा मजा आता था पूरा दिन। नानक चंद घर आए, उन्होंने मुंशी राम से कहा बेटा कल तुम भी मेरे साथ चलो, उसका व्याख्यान अच्छा होता है, जरा सुन लेना था। तो इनका मन हुआ ये लंगोटी वाला आदमी हिंदी बोलता है इंग्लिश जानता भी नहीं, ये क्या बोलता होगा, चले गए बेमन से, थोड़ा सुना एक दिन दो दिन, उन्हें लगा बात तो ये भी कुछ पते की बोल रहा है, ऐसी उल्टी सीधी तो बात नहीं बोल रहा। फिर उन्होंने 1-to-1 डिस्कशन किया, महर्षि दयानंद के सामने बैठ गए, बोले मुझे तो ईश्वर पर विश्वास नहीं। दयानंद जी ने उनको बहुत समझाया ये वो, अंत में गाड़ी रुक गई, स्टेलमेट हो गई। मुंशी राम ने कहा आपने कहा लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मुझे ईश्वर जैसा कुछ विश्वास नहीं। दयानंद ने कहा देखो तुमने प्रश्न पूछे, मैंने तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, अब ईश्वर पर विश्वास तो तुम्हें तभी होगा जब उसकी कृपा तुम्हारे ऊपर, एक दिन उस पर ऐसी कृपा हुई हो तो श्रद्धा का ऐसा भूखा बन गया, उसने नाम ही रख लिया श्रद्धानंद, फिर तो ये इतिहास में गया। आज हम कुछ उसी ढंग से इन 8 मंत्रों को देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप एकदम ऑब्जेक्टिव बन जाओ जैसे मुंशी राम था, क्वेश्चन एवरीथिंग, यहां हम आ गए हैं तो उसी स्पिरिट में हम ये मंत्रों को देखेंगे। The 8 mantras which beautifully describe the creator, creation and the human objective. What is our objective of this human life? मैं थोड़ा तो पीछे चला जाता हूं क्योंकि जब भी ये ईश्वर विश्वर की बात करो मुझे बड़ा डर लगता है, मुझे डर लगता है कि I will be misunderstood या आय समाज को लोग समझेंगे ये भी एक रिलीजियन है, मुझे इसका बहुत डर लगता है। और मैं भी जाता हूं, देव जी सुषमा बहन जी मुझे कहते हैं मल्टीफेथ में जाओ वहां जाओ, मैं जाता सब जगह हूं लेकिन मैं रिलीजन वालों लोगों से बहुत घबराता हूं, उनसे बातचीत करने में मुझे बहुत डर लगता है, आई जस्ट थिंक दे आर इन अ डेड एंड, उनको कैसे समझाएं, और वहां एटीट्यूड होता है सब एक दूसरे की थपकी दे, आप अपनी दुकान चलाओ मैं अपनी दुकान चला रहा हूं, मुझे दुकान नहीं चलानी, हमें दुकान नहीं चला, हम क्या का बात करना चाहते हैं। ये 2 सप्ताह पहले मैंने संक्षेप में रखा था, आज मैं आई एम सजेस्टिंग यू रिक्वेस्टिंग यू आप उस ऑब्जेक्टिविटी से सोचो जो मुंशी राम में थी या जो किसी भी युवक में होती है, हम सबके भी बच्चे हैं 20-22 साल वाले, वो ईश्वर को जल्दी नहीं मानते, आप भी मत मानो, पर उस ढंग से सोचो एंड देन यू कम टू योर ओन कंक्लूजन। तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये जगत किसी ने बनाया है या नहीं हमें नहीं मालूम, इस जगत में हम रहते तो हैं, हाउ डज इट फंक्शन, और आज की साइंटिस्ट ने they have discovered a lot of laws of physics, how the matter behaves, etc., etc. पर इस जगत में सब जड़ पदार्थ नहीं है, हम इन सब चीजों से अलग हैं। हमारे अंदर एक चीज है, विचित्र सी चीज है, वो कहां से आई, कैसे आई, मुझे नहीं मालूम, और उसको हम कहेंगे चेतन शक्ति। और पशु पक्षी भी हैं, बहुत सारे जगत में प्राणी हैं, उनके अंदर भी चेतना है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये मंच पर दूसरी चीजें हैं मेरे अलावा, इन सब चीजों में चेतना नहीं। तो ये जड़ और चेतन के दो क्लासिफिकेशन तो बन ही जाते हैं। आज के साइंटिस्ट भी इसके पीछे लगे हुए हैं, वो अपने ढंग से सोच रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक साइंटिस्ट सब मिलकर 10 साल 20 साल 50 साल बाद एक बहुत अच्छी थ्योरी बन जाए, दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, एवरी इवेंट दैट टेक्स प्लेस। थ्योरी बनाना, फिलॉसफी बनाना आसान नहीं है। यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन ए लॉजिकल मैनर, उसका कुछ लॉजिक रैशनल होना चाहिए बेसिस, एंड इट शुड बी कंसिस्टेंट। ऐसे नहीं कि यहां ये लॉजिक लगा दी, वहां दूसरी लॉजिक लगा दी। यदि तीनों दो पांच होते हैं तो दो और तीन भी पांच ही होंगे। आपको एक रैशनल लॉजिकल कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क में एक थ्योरी बनानी होगी, जो आप समझ सकते हैं आसान नहीं है। बहुत पहले से दुनिया में लोग सोचते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। बस समझिए 10 साल बाद हम एक जगह ऐसे पहुंच गए, वी आर वेरी एक्साइटेड, वी विल कॉल इट एज सो कॉल्ड यूनिफाइड थ्योरी ऑफ मैटर एंड कॉन्शियस, दैट विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। और उसको वेरीफाई भी कर लिया, और इतनी अच्छी है कि उसके प्रेडिक्ट भी कर सकते। जब कोई थ्योरी अच्छी हो जाती है ना, जैसे मैं अपने जब इंजीनियरिंग में काम करता था तो मैंने क्या बनाया, ये ऑटोमोबाइल इंजन के कंबशन प्रोसेस का मैथमेटिकल मॉडल। यानी एक तो असली इंजन है, हमने बनाया मैथमेटिकल मॉडल। अब इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट एंड वैलिडेट कहते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमने टेस्ट किया। अब जब ये टेस्टेड वैलिडेटेड हो गया तो हम इंजीनियर्स के पास जाते हैं, भाई अब तुम्हारे पास कोई नया इंजन डिजाइन होना तो तुम्हें प्रोटोटाइप बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें इतना पैसा खर्च होता है, इतना टाइम लगता है, तुम इस मैथमेटिकल मॉडल में वो पैरामीटर चेंज करके, डिजाइन पैरामीटर, यू विल बी एबल टू सी बिकॉज इट हैज प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी। वो कहेगा इतना आपको विश्वास है, हम कहेंगे हाँ, क्योंकि हमने इसको टेस्ट एंड वैलिडेट किया हुआ है। तो इस ढंग से काम चलता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे आगे प्रगति हो रही है। समझिए द यूनिफाइड थ्योरी ऑफ मैटर एंड कॉन्शियसनेस उतनी सही है, इतनी सही है कि एक आदमी को देखें तो ये प्रेडिक्ट भी कर दे कि इसके घर में सुख शांति है, और इसका चेहरा हम फोटोग्राफ से उस थ्योरी में डालें, नहीं नहीं इसके घर में कुछ चक्कर है, ये तो दो चार दिनों में सुसाइड करने वाला है। यानी वो थ्योरी इतनी सही हो, क्योंकि द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन द वर्ल्ड इज ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड आज अगले क्षण क्या कहने वाला है, इसको कोई प्रेडिक्ट कर ले तो मेरे हिसाब से दैट इज द मोस्ट वंडरफुल थ्योरी। और समझ लीजिए वो थ्योरी है हमारे पास, वो है तो नहीं, पर लेट अस सी हाउ डज इट मूव ऑन। तो मैं कहना चाह रहा हूं, ये आज कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि ये, अच्छा अब तो काफी साफ हो गया। तो यहां मैंने बहुत स्कीमेटिकली मैं बता रहा हूं, ये मानव समाज है, ये एक सीधा रास्ता है, क्योंकि सच्ची चीज सीधी साधी होती है, उसमें कोई घालमेल नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। सीधे रास्ते से ये मानव समाज जाए तो हम सीधे वहां पहुंच जाएंगे, द यूनिफाइड थ्योरी ऑफ मैटर एंड कॉन्शियसनेस। उसमें सुख शांति है, कोई दांवपेच नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, हर मनुष्य यहां सुख से जी रहा है, और उसका परलोक भी बहुत अच्छा है, लोक और परलोक जिसको कहा अभ्युदय और निश्चयस, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा, ऐसा हो जाएगा। और क्या होगा, वास्तव में हो जाएगा यदि हम इस थ्योरी को जान ले समझ ले। तो आज के जमाने में एक बहुत बड़ा समुदाय है जो साइंस को मानता है, एस वाला, वो वहां तक नहीं पहुंचा है, लेकिन काफी दूर तक पहुंच गया, काफी दूर तक पहुंच गया। इसको थोड़ी सी दूरी है, ये अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कॉन्शसनेस कहां है, ये क्या चीज है, ये कहां से उत्पन्न हो जाती है, इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, इत्यादि इत्यादि। दे आर रियली वर्किंग ऑन इट। और दूसरी उनकी समस्या है, ये जो जगत है इतना अच्छा है, यहां इतने प्रिसाइज लॉज हैं, ये पृथ्वी भी इतनी तेजी से इतना बड़ा 3000 किलोमीटर के डायमीटर की कोई गेंद हो एंड इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 100,000 किलोमीटर पर आवर। और ये पूरा ऑर्बिट देखिए, कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, 365 दिन 22 मिनट इतने सेकंड, प्रिसाइज मिली सेकंड में ये ऑर्बिट पूरा करती, इतना प्रिसीजन है, इतनी बड़ी गेंद, इतनी बड़ी डिस्टेंस, एंड द टाइम इट टेक्स टू कवर इट इज सो प्रिसाइज कि हमारी एटॉमिक क्लॉक को लास्ट ईयर 1 सेकंड से एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो ये साइंटिस्ट हर 4-5 साल के बाद 1 सेकंड का थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं सो एज टू अलाइन विद दिस होल इवेंट। ये सब इतना सारा कुछ चमत्कार चल रहा है, तो ये सब किस लिए है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑल दिस, ये खेल तमाशा क्यों है, और खासकर एज फॉर ह्यूमन बींग्स आर कंसर्न, हम इस जगत में क्यों आए हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव, व्हाट वी ऑट टू अचीव, एंड वेयर विल वी गो फ्रॉम हियर। तो ये कॉन्शियसनेस एंड पर्पज ऑफ लाइफ या पर्पज ऑफ द वर्ल्ड, वट एवर यू कॉल इट, ये दो चीजें सबको परेशान कर रही हैं अभी। और हम कहते हैं कि हमारे ऋषि भी साइंटिस्ट थे, उनके पास इसका समाधान था, और इसी को मैं आपको उन 8 मंत्रों में दिखाना चाह रहा हूं। मैं 8 मंत्रों में वही दिखाना चाह रहा हूं, फिर बाद में कभी समय मिलेगा तो ये भी चर्चा करेंगे, ये 8 मंत्र सीधे ये साइंटिफिक कम्युनिटी क्यों नहीं अपना लेती है, उसके जो मौलिक सिद्धांत है, और ये जो छोटा सा गैप है उसको क्यों नहीं पूरा कर लेते, ये जो नॉन फिजिकल हमारा कॉन्सेप्ट है आत्मा और परमात्मा का, इसको वे अपना लें, दे विल क्विकली जम्प टू द डेस्टिनेशन। ये क्यों नहीं हो जाता ऐसे, तो इसके पीछे भी हम लंबी कहानियां बताएंगे कभी। लेकिन इन दूसरे भले लोगों को देखिए, जो फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन है, जो थोड़ी दूर तो सही रास्ते पर चलते हैं फिर कहीं दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं, R1, R2, R3, हजारों रिलीजन है आजकल। ये सब मैं बताना चाहता हूं, ये डेड एंड पर है, ये समझते हैं कि इनके पास पूरी थ्योरी है, बट दे नेवर गेट टू इट, बट दे आर इन देयर ओन कंफर्ट जोन। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कर रहा हूं, आई समाज इज नॉट वन ऑफ देम, आई समाज स्टैंड्स हियर। और ये जो ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्र हैं, मैं 4 घंटों में मंत्र का अर्थ भी आपको समझा दूंगा, और देव जी ने हमें ये अनुमति दे दी कि शुरू में जो हम ध्यान उपासना करते थे, संध्या उपासना, वो अब अंत में कर रहे हैं, ताकि सब लोग उससे प्रभावित हो। उसको आप अवश्य सीखिए, नहीं तो ये 4 घंटे की कथा सब बेकार चली जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं इसको आप एक साइंटिफिक ढंग से देखें, दिस इज साइंटिफिक थ्योरी, थ्योरी और प्रैक्टिस साथ मिलकर ही एक साइंस आगे बढ़ती है। तो ये एक स्पिरिचुअल साइंस है, इसकी थ्योरी मैं बताऊंगा, फिर मेरे बाद आज परविंदर जी यहां बैठकर आपको उपासना की विधि समझाएंगे, आप उसको समझिए, कीजिए उसको, आप समझिए शब्द अर्थ और भाव। लेकिन वो उपासना आपको करनी है, आज आप कहें उतना ही काफी नहीं है, उसको रोज घर में करना है, तब आप धीरे धीरे इन सब चीज को एसिमिलेट कर पाएंगे, नहीं तो ये रोज की ये स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट ही रह जाएगा आपका। मैं चाहता हूं ये थोड़ा हम आगे बढ़ें, तो इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं अब आगे चल रहा हूं इन 8 मंत्रों पर। तो हर दिन मैं 2 मंत्र लिया करूंगा, आज ये ले रहा हूं, और ये इतना फादर्स डे के साथ मेल खाता है कि आप समझ लीजिए कि फादर्स डे पर ये व्याख्यान हो रहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुहितानि पयासु यद भद्रम तन्न आसु। ये भाषा भी कठिन नहीं है, आपको हिंदी थोड़ी आती हो, थोड़ी अच्छी आती हो, आप उससे पकड़ेंगे ना तो आप दूर नहीं पहुंचेंगे। मैं हर शब्द के साथ ऐसा शब्द बता दूंगा जो आपके दैनिक बोलचाल के शब्द में भी है। जैसे सबसे पहले मैं ले रहा हूं, यहां संबोधन हम किसी को बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हे सविता देव। देव शब्द तो आप सब जानते ही हैं, देव जी की बनाई हुई आयुष्माच है। देव शब्द जो मैंने बता भी दिया, मात्य देव भव पित्य देव, और सबसे बड़ा देव है वो परमात्मा देव, जो केवल देता ही देता है, लेता कुछ भी नहीं, उसे हम कुछ दे भी नहीं सकते। तो हे सविता देव, सविता भी शब्द कोई बहुत नया शब्द नहीं है आपके लिए। जब एक युवती मां बनने वाली होती है उसको कहते हैं पैसव, पीड़ा, लेबर पेन, नहीं? पैसव शब्द आप जानते हैं ज्यादातर लोग, डिलीवरी ऑफ ए चाइल्ड, है ना, जन्म देना। सव से थोड़ा अपभ्रंश हो जाता है हिंदी में, सेना। एक चिड़िया अंडे सेती है, बोलते हैं ना चिड़िया क्या कह रही है, अंडे सेती है, तो सेना शब्द भी सविता का सवना से सेना बन गया। बाल चतुर सविता कौन हुआ, जो जन्म देता है, है ना। हे सविता देव, तुमने हमें यहाँ जन्म दिया, तुमने हमें यहाँ भेज दिया है। तो ये इंक्वायरी ऐसे ही चल रही है, मैंने कहा आप ऑब्जेक्टिव हो जाइए। तो ऑब्जेक्टिव आदमी क्या सोचेगा कि ये जगत किसने बनाया, क्योंकि एच फाइज हमारे जो घर है, हमारे घर में देखिए कोई चीज अपने आप नहीं बनी, है ना। फर्नीचर किसी कारपेंटर ने बनाया, कोई भी चीज है किसी ने बनाई है। इस हॉल में भी जितनी भी चीजें दिखाई दे, ऑल आर मैन मेड स्टफ, कोई चीज है तो किसी ने बनाई है। और दूसरा क्या होता है, कोई चीज हिलती डुलती है तो उसको कोई हिलाता है, सीधी सी बात है। एक कार चल रही है तो हम सीधे बोल देंगे इसके अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है ना। यदि अभी आजकल नई नई गाड़ियां चल रही हैं, एडवांस बड़ी टेस्ला कंपनी और भी कुछ ड्राइवरलेस कार बना रहे हैं, है ना। आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो ड्राइवरलेस ट्रेन चलती है, मोनोरेल जैसे। और आप जानते हैं इसका भी कोई एक कंट्रोल स्टेशन है जहां एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग बैठकर बटन दबा रहा है, है ना। तो अंत में आप बोलेंगे देयर इज अ कॉन्शियस बीइंग हु इज ऑपरेटिंग दिस सोफिस्टिकेटेड सिस्टम। तो जो मैन मेड सिस्टम है वहां दो चीजें जरूरी हैं, एक है बनाने वाला और एक है चलाने वाला। तो साइंटिफिक इंक्वायरी में आपसे यही मांग रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग दिस इज प्रूवन, आई एम सेइंग लेट अस अस्यूम कि इस जगत को बनाने वाला एक कोई है और एक प्राइम मूवर है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को घुमाता है, पृथ्वी को सुई के चारों तरफ घुमाता है। थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए, डोंट एक्सेप्ट इट, मान लीजिए, दिस इज वी कॉल इट इन साइंटिफिक इंक्वायरी, लेट अस अस्यूम इट एंड देन टुवर्ड्स द एंड वी विल से हैंस दिस हैज बीन प्रूवन, सो आवर असम्पशन वॉज राइट। दिस इज हाउ ए साइंटिफिक और मैथमेटिकल थ्योरम इज डेवलप्ड। सो लेट अस अस्यूम कि देयर इज ए सविता देव जिसने इस जगत को जन्म दिया, जगत को बनाया, हमारे आने से पहले सब बना हुआ था, और वो इस जगत को ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, वो इसके कण कण में इसको मोशन दे रहा है, इसको मूवमेंट दे रहा है, ही इज द प्राइम मूवर। तो वो सविता देव है। आज मैं अब थोड़ा बड़ा हो गया हूं, लेकिन एक चीज से किसी का पीछा नहीं छूटता, वो है दुख। बिल गेट से लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप, नरेंद्र मोदी, आप किसी के पास भी चले जाओ, किसी से भी पूछो क्या आपके जीवन में दुख है क्या, सब बोलेंगे कुछ ना कुछ तो दुख है ही। अब हम थोड़े मैच्योर हो गए हैं, बच्चे थे, जहां दुख हुआ मां के पास चले गए, पिताजी के पास चले गए, वो हमारे दुख दूर कर देते थे, वो हमारे देवता थे। अब आज मैं कहां जाऊं, तो मैं कह रहा हूं तू ही सबसे अच्छा ठिकाना है, हे सविता देव मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आया, विश्वानी दुहितानी परासु। विश्वानी, देखिए सब शब्द सीधे साधे हैं, सविता देव आसान था, विश्व आप जानते ही हैं सब कुछ, विश्वानी यानी सकल, सर्वाणी सभी कुछ। अब यहां सर्वाणी क्यों लिखा, नहीं लिखा विश्वानी क्यों लिख दिया। अब परमात्मा का हर चीज में बड़ा रहस्य होता है, वो भी मैं थोड़ा बताऊंगा, मैंने थोड़े अपने रिमाइंडर पॉइंट नीचे रखे हुए हैं। अभी हम देखेंगे विश्वानी दूयित, दू जहां भी आ जाए वहां समझ लाइए निगेटिव है, दुख सुख में सु अच्छा है, स्वस्ति आता है हमारे यहां स्वस्ति वाचन, और दुख यानी खराब। महर्षि दयानंद ने दुहित का क्या अर्थ किया है, दुख दुर्गुण और दुर्व्यसन, दुख दुर्गुण और दुर्व्यसन, ये महर्षि दयानंद के अर्थ है। तो दुहितानी यानी सब बुराइयां, सब अनवांटेड निगेटिविटीज, विश्वानी दुहितानी, पया पया यानी पये चले जाए, ठीक है ना, बहुत आसान। विश्वानी दुहितानी पया सुवा, जितनी भी गड़बड़ कुछ है वह सब मुझसे दूर चले जाए, मेरे पास जो दुख आते हैं वो दूर चले जाए। मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैंने बहुत कोशिश की कि सुखमय जीवन जीऊं, लेकिन ये दुख आ ही जाते हैं। अब तुमने ये जगत बनाया है, मैं तुमसे ये मांगने आया हूं कि तुम मेरे सारे दुखों को दूर कर दो, और जो भी गंदगी गड़बड़ आती है बुराइयां कुछ भी, तुम उन्हें दूर कर दो। जब मैं बहुत छोटा था मेरे माता पिता दूर कर देते थे, अब उनकी भी सामर्थ्य कम हो गई है और मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे पास दूसरे हाई लेवल के दुख आ जाते हैं, अब मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। क्या चाहिए बाद में, यद जो कुछ भी, भद्र यानी बढ़िया अच्छा, भद्र पुरुष जेंटलमैन को कहते हैं, तत् न, तत् यानी ऑल दैट इज गुड, दैट और न यानी हमारे पास, आस हुआ यानी आ जाए, बुराइयां चली जाए, निगेटिविटीज गंदगी सब चली जाए और अच्छाई सब आ जाए, ये मैं उस सविता देव से मांग रहा हूं जिसने इस जगत को बनाया और मुझे इस जगत में भेज दिया है। इसमें दो चार बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहले तो है इसका सीक्वेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले बताया उन्होंने कि बुराइयां जाए अच्छाई आए, ये भी कह सकते थे मेरे पास सुख आए और दुख चले जाए। परमात्मा ने कहा नहीं, सीक्वेंस ऐसा ही होगा कि पहले आपके अंदर की सब गंदगी मलिनता जानी चाहिए, तभी अच्छा ही आए। और ये डे टू डे लाइफ में होता है। आप अपने बच्चे से भी सुबह कहेंगे, बच्चा सुबह उठते ही कहे कि मुझे कुछ खाने की इच्छा है, प्लीज ब्रश योर टीथ फर्स्ट, आप अपना मुंह साफ कर लो फिर अच्छी चीजें मुंह में डालना, है ना। आपके पास भी कोई बर्तन है उसमें आप दूध डालना चाहती हो, इसको थोड़ा साफ कर लेंगे, है ना। तो वही हमारा सीक्वेंस है, पहले जो भी हमारा कंटेनर है, और यहां हमारा कंटेनर क्या है, बॉडी एंड माइंड। बॉडी एंड माइंड के अंदर मुझे पैक करके परमात्मा ने भेज दिया, ये दो हमारे वैसल हैं, इन दोनों में, और गंदगी कुछ ऐसी है जो मैं अगले वाक्य में बोलने वाला हूं, विश्वानी क्यों उन्होंने किया, क्योंकि विष, ये सब संस्कृत में धातु से शब्द बने हैं, विष प्रवेश ने, प्रवेश करना आप जानते हैं। अब विश्व शब्द है, मैं आपसे पूछूं विश्व शब्द से मिलता जुलता आपको हिंट देता तो आप समझ जाते प्रवेश, है ना। अब विश्व को विश्व क्यों कहा, विश्व को विश्व इसलिए कहा कि परमात्मा का उस सारे विश्व में प्रवेश है, है ना। सारा जो यूनिवर्स है उसको विश्व कहा, विश्व में कौन रहता है, वो परमात्मा का प्रवेश है, इसलिए इस विश्व को विश्व का, आप समझ रहे ना। संस्कृत के वेद के सब शब्द धातु वाले शब्द होते हैं, कहने का मतलब है शब्द में शब्द का अर्थ छिपा हुआ है, थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ता है। विश्व प्रवेशने से, अब ये इतना बड़ा रहस्य उन्होंने क्यों बताया हमें, उन्होंने ये बताया दुहितानी जितनी है, जितने दुख हैं, जितने गंदगी है, दुहितियां बुराइयां हैं, ये सब बिना बुलाए आपके अंदर आ जाती, हम इनको निमंत्रण देने नहीं जाते। आज ना धोखे मैंने ये कुर्ता पहना, आपने भी शर्ट कुर्ता पहना, आप पूरी कोशिश करें कि ये गंदगी न पकड़े, लेकिन एंड ऑफ द डे दिस विल गेट डर्टी, देन यू हैव टू वॉश इट, है ना, यू हैव टू मेक एफर्ट टू वॉश इट। हमें गंदगी अपनाने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो देखिए ये बड़े हर्ष की बात परमात्मा ने हमें समझाई कि तुम्हारे अंदर, तुम्हें जगत में मैंने भेजा, मैंने सब कुछ बहुत सोच समझ के जगत में बनाया है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है, तुम्हारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि यू पिक अप ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लटर, ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनवांटेड स्टफ इन योर डे टू डे लाइफ, और तुम्हें पता भी नहीं चलता, अननोइंगली हो जाता है। बट यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ इट। तुम इसको स्वीकार ही ना करो, यू आर इन योर ओन कंफर्ट जोन कि मैं तो बहुत शुद्ध पवित्र मन वाला हूं, काम नहीं चलेगा। आप आज उपसे उपासना भी करना चाहेंगे, बहुत आसान नहीं है ये, क्योंकि हमारा मन शुद्ध पवित्र नहीं है, और यही एक खेल है। अब आप कहेंगे कि शुद्ध पवित्र कैसे होगा, उसका भी उत्तर यही है कि उपासना से होगा। फिर आप कहेंगे उपासना हो ही नहीं सकती यदि पवित्र मन नहीं है, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और यही फादर्स डे की महिमा है। आप अपने बचपन को याद कीजिए, या जब आप पिता या माता बने थे तब याद कीजिए। मैं भी, मुझे भी याद है, मेरे भी 3 बच्चे हैं। मैंने अपने बच्चे से कहा, 1.5 साल का, 1 साल का बच्चा है, बेटा तुम ड्राइंग रूम सिटिंग रूम में हम बैठे हैं, तुम ये सेंटर टेबल का हाथ पकड़ के खड़े हो जाओ, अब तुम चल के मेरे पास आओ। हर पिता अपने बच्चे को चाहता है कि अपने पैरों पर चलना सीखे। और मैंने उसको एक आश्वासन दिया, बेटा इफ यू विल फॉल डाउन आई विल होल्ड इट। उसने मुझ पर विश्वास किया, पहला कदम चला, 2 कदम चले, गिरने लगा, मैंने झट से उसको पकड़ लिया। ये बड़ा रहस्य है। ईश्वर उपासना में यही आपके काम आएगा। पिता ही उसको चलना सिखाएगा। वो बोले कि जब तक मुझे चलना नहीं आता मैं चलूंगा नहीं, जब तक मुझे साइकिल चलाने नहीं आती मैं साइकिल पर बैठूंगा नहीं, जब तक मुझे स्विमिंग नहीं आती मैं पानी में नहीं जाऊंगा। तो हर पिता ने, हर माता ने बेटे को समझाया है, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गेट इन टू वाटर एंड लर्न स्विमिंग, देन ओनली यू विल लर्न स्विमिंग। आप साइकिल पर बैठ कर पांव चलाओ तभी साइकिलिंग आएगी। 1-2 बार गिरोगे लेकिन हम तुम्हें पकड़ लेंगे, बचा लेंगे। यह पिता और बच्चे का जो रिलेशनशिप है, ये ईश्वर उपासना की यात्रा में भी काम आएगा। आप भी 2-4 कदम चल के उसके पास जाना चाहते हो, आप बोलो कि मुझे तो उपासना आती ही नहीं है, मैं क्यों जाऊं। यही आप जाने लगोगे उसी से आपको आएगी, और जैसे जैसे आप जाओगे आपका मन शुद्ध पवित्र होता जाएगा। और आपकी वो पेस, जिस गति से आप जाते थे, वो बढ़ते जाएंगे। इसका और कोई उपाय है नहीं दुनिया में। इसलिए मैं बोल रहा हूं, विष प्रवेश ने, गंदगी तो अपने आप आती है, उसके लिए कोई निमंत्रण नहीं देना पड़ता, बट यू हैव टू मेक ए लॉट ऑफ एफर्ट टू क्लीन इट। सफाई करने में बहुत रखना पड़ता। सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यह हर चीज में काम आएगा। छोटा सा मंत्र है, इसमें रहस्य इतने अधिक भरे हुए हैं कि आप दंग रह जाएंगे। इवन फॉर द बॉडी, बहुत से लोगों को आज कॉन्स्टिपेशन की समस्या, दे डोंट वेट, उनको ऑफिस में जाना है, ब्रेकफास्ट, वो समझते हैं मैं खाऊंगा नहीं तो एनर्जी नहीं आएगी। अरे भाई, भले आदमी, इफ यू डोंट एम्प्टी योर सेल्फ, हाउ, व्हाई डू यू वांट टू फिल इन। ये सीक्वेंस आप समझो, पानी ज्यादा पी लो, एक दिन उपवास कर लो, पर ये साइकिल, इस रिदम में तो आ जाओ, नहीं तो शायद जीवन भर आप इस समस्या से लड़ते हो। नॉट ओनली फॉर द फूड, इवन फॉर द नॉलेज। दयानंद गए विजयानंद के पास। लंबी कहानी नहीं बनाना चाहता, जल्दी, समय कम है। विजयानंद जी ने यही कहा, तुमने अभी जो व्याकरण जहां तहां पढ़ा है सब भूल जाओ, वो पुरानी किताबें फाड़ दो, क्योंकि मैं आर्ष पद्धति से, पाणिनि अष्टाध्यायी से पढ़ाता हूं। पुराना सब जो गड़बड़ सड़बड़ है, यू हैव टू फॉरगेट इट, यू हैव टू सेट इट असाइड। मेरी क्लास में भी लोग आते हैं, क्योंकि योग के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है। हम सिखाते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकना, मन की हलचल को रोकना, उसके बाद यू डिसएंगेज फ्रॉम योर माइंड, देन आप यू कनेक्ट टू द ईश्वर। तो उसको हम कहते हैं मेडिटेशन, डिसकनेक्शन फ्रॉम माइंड, देन यू कनेक्ट टू परमात्मा, दैट इज ईश्वर उपासना। लेकिन योग के नाम पर लोग क्या क्या कुछ सोच के, तो मैं सबको पहले दिन यही बताता हूं, जो आप जानते हो उसको साइड लाइन रखो, और एक नए ढंग से सुनो बात। तो ये बहुत आवश्यक है। देखिए इसी द्विता ने इसी सीक्वेंस को हम अभी पविंदर जी बोलेंगे, डिसिप्लिन द बॉडी, डिसिप्लिन द ब्रीदिंग माइंड। ब्रीदिंग में वो बोलेंगे ब्रीद आउट देन होल्ड इट आउट देन ब्रीद इन। ऐसे आप डॉक्टर के पास यहां जाओगे वो स्टेथोस्कोप लगाएगा, वो बोलेगा टेक ए डीप ब्रीद इन। हमने कहां से सीखा? इस मंत्र से। पहले यू ब्रीद आउट, यू एम्प्टी इट, देन यू फिल इन मोर विद फ्रेश एयर। ये सारी चीजें हम द्वितानी पयासुआ से सीख हैं। पहले हेचक आता है, बाद में पूरक आता है। तो हमारी स्कीम में इस ढंग से काम चलता है। विष प्रवेश ने मैंने थोड़ा बता ही दिया, बॉडी डिटॉक्सिफाइड ड्यूरिंग स्लीप। देखिए परमात्मा सब कुछ कर रहा है। रात में हम सो जाते हैं 6 घंटे 7 घंटे, सारा बॉडी इज डिटॉक्सिफाइड, सारी गंदगी निकाली जा सकती, निकल जाती। हर क्षण वो काम करता है हमारे बैकग्राउंड में, उसको प्राण बोलते हैं। और उसी प्राण के कारण सारा कंफ्यूजन है, प्राण के कारण ब्रेन में हलचल है। और सारे साइंटिस्ट समझता है कि यही मेरी कॉन्शियसनेस है। तो हम समझाना चाहते हैं कॉन्शियसनेस इज नॉन फिजिकल। ये सारी जो गतिविधि है दैट इज इंसिडेंटल टू कॉन्शियसनेस। घर में मैं रहता हूं, मैं चेतन प्राणी हूं, वहां फ्रिज चल रहा है, एयर कंडीशनर चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, दैट इज इंसिडेंटल टू माई लिविंग, दैट इट सेल्फ इज नॉट द कॉन्शियसनेस। तो ये सारा बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन आप आय समाज में आएंगे, यहां की बातों को ध्यान से समझेंगे, यू विल श्योर ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट वी कॉल द यूनिफाइड थ्योरी ऑफ मैटर एंड कॉन्शियस। अब परमात्मा से हमने कहा यद भद्रम तन्न आसु, अच्छा क्या है तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। एक छोटा बच्चा भी मां से कुछ नहीं मांगता, उसको मालूम है जो चीज जिस समय चाहिए मां के थैले में रहती है, सब चीज परमात्मा। कहने का आशय है यहां आकर आप उपासना में हे परमात्मा मुझे ये दो वो दो, उसको हम उपासना नहीं कहते। कुछ भीख नहीं मांगनी है परमात्मा से। क्या कहना है? इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड, तूने मुझे इतना दिया है इसके लिए बहुत धन्यवाद। दैट शुड बी द ड्राइविंग फोर्स एंड नॉट दैट परमात्मा से मैं ये मांगूंगा वो मांगूंगा। आइए दूसरा मंत्र भी, हे अन्य गर्भ समवत ताज्ञ। बहुत जल्दी मैं बोल रहा हूं, हे अन्य, सोने को भी स्वर्ण को भी कहते हैं, बहुत चमकीला। ये दुनिया में कितनी चमक दमक है, बहुत चमक दमक है, सब चीज कितनी आकर्षक है। लेकिन यह संसार का जो बनाने वाला है वो क्या है कि सारा संसार उसके गर्भ में है। का नाम हो गया हिरण्य गर्भ। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मांड है, वो ब्रह्म है, सारा जगत जैसे उसका अंडा है, ये सब उसके अंदर समाया हुआ है। जब ये जगत इतना सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा, ये भी हमें थोड़ा सोचना होगा। यदि बनाने वाला चीज बनी हुई ऐसी है तो बनाने वाला कैसा होगा? दयानंद के शब्द है, कारीगरी इतनी अच्छी है तो कारीगर कितना अच्छा हो, ऋग्वेदादि भाषभूमिका में लिखते हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं। समवत ताज्ञ, अब ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, ये 8 मंत्र आप देखिए तो आपके ऊपर लागू होते हैं जो यहां सब माता पिता हैं। आपका बच्चा आपको सविता देव समझता है जो सब दुख दूर कर देंगे, है ना, और सब सुख देंगे। आपके 2, 4, 5 साल के यदि बच्चे हैं तो आपका उनके साथ जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप आपका उस परमात्मा के साथ होना चाहिए। और ये मंत्र आप अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं। युवक युवती का विवाह हो गया, 2 साल 3 साल एक छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं, अब दे वांट टू एनलार्ज फैमिली, एक बच्चा आने वाला है जन्म लेने वाला, देन दे मूव टू ए लार्जर हाउस, तैयारी करने लगते हैं, चीजें लाने लगते हैं। उन्हें सब मालूम है बच्चे के आगमन से पहले घर में क्या तैयारी होनी, उसी का यह वर्णन हो रहा है। परमात्मा ने हमें यहां भेजा, इसके पहले क्या किया? हिरण्य गर्भ, अगले मंत्र में आएगा यह आत्मदा बलदा, अब आत्मा को बल के साथ भेज दिया। पर मुझे यहां भेजने के पहले परमात्मा ने इस संसार को कैसे बनाया, घर को कैसे बनाया, इसका वर्णन है। यह सारा संसार उसके गर्भ में है, उससे दूर होने का सवाल ही नहीं उठता है। वह कभी इस संसार से हाथ नहीं खींच सकता, कभी नहीं खींचेगा और कभी नहीं खींच सकता। जैसे मां के गर्भ में बच्चा है, मां चाहे भी तो मां का खून बच्चे के खून में जाना ही जाना है, मां की सांस बच्चे की सांस बननी ही बननी। वैसे ही इस जगत के सब चीजों को परमात्मा से अनुप्राणित होना ही होना। समवर्तता अज्ञे, अज्ञे यानी पहले, वो पहले से ही यहां है, सब चीज उसने पहले से इंतजाम किया हुआ है। भूतस्य जातः, पंचभूत से सारी चीजों को जातः यानी जन्म देकर तैयार किया हुआ। पति एक आसीत, एक ही स्वामी है, उसके यहां ड्यूअल रोल नहीं है। ही इज द अल्टीमेट फाइनल अथॉरिटी। आसीत इसको परोक्ष लिट बोलते हैं, यानी डिस्टेंट पास्ट में भी था, आज भी है। वैसे उसका ही शासन चल रहा है सब। नॉट ओनली उसने बना दिया, वो सपोर्ट भी किया, सदाधार यहां भी लिट लगा है। वो पहले भी पृथ्वी को सपोर्ट दे रहा था, आज भी दे रहा है, आगे भी देता रहेगा। पृथ्वी को और सूर्य को और सारा कुछ जो इस संसार में है, वह सबको सपोर्ट दे रहा है। वैसे ही उसी को जानने की, उसी को समझने की, उसी के निकट जाने की हमने कोशिश करनी चाहिए। कस्मै देवाय अविशा विधेम। आइए अब हम थोड़ी देर में अरविंद जी को बुलाने वाला हूं, वो आपको गायत्री मंत्र की भावना से गाइड करेंगे। ये मंत्र है और इनके भाव अर्थ केवल आपके अंदर दिमाग में ही न रह जाएं, ये आपके जीवन का एक अंग बने। ईश्वर उपासना आप पूरा वैसे अपना लें और ये फादर्स डे की बहुत सही गिफ्ट होगी। आप अपने आप को दे सकते हैं कि मैं उस जगत पिता को, उसके पास जाने को, जैसे है बच्चा, और ये आपने आयुष्मान ह्यूस्टन तो बहुत अच्छा है, उसने गांधीधाम और पांडिचेरी में अनाथालय खोले। क्यों खोले आपने अनाथालय? वो अनाथ बच्चे थे, आप उनका दुख नहीं देखना चाहते। क्यों अब उनको दुख था? क्योंकि वो अपने माता पिता की गोद में नहीं जा सकते। फिर आपने इतना बड़ा प्रकल्प किया, अभी भी आप संभाले हुए हैं ना, अभी इट इज टेकिंग ए लॉट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी, सब कुछ विचार चल रहा है, लेकिन आप अपने बारे में भी आप सोचिए, क्या आप उस पिता की गोद में जा सकते हैं? क्या आप एक अनाथ नहीं है? और सच में देखेंगे तो आज का पूरा मानव समाज, 7 billion पीपल ऑल आर एज अनाथ एज एनीबडी एल्स, क्योंकि ये जगत पिता की गोद में जाने के काबिल नहीं है और न जाना चाहता है, न इतनी अधिक इग्नोरेंट है। उसी की पूर्ति हम करना चाहते हैं, और ये छोटी मोटी चीज नहीं है जो अभी अरविंद जी यहां आएंगी, अभी मैं बुलाने ही वाला हूं 2 मिनट। बाहर कोई बोलेगा, अरे हमारे आय समाज में एक वॉलंटियर है अरविंद जी, किचन में खाना परोसती हैं, किचन में खाना परोसती हैं, आज उन्होंने 10 मिनट में हमसे कुछ मेडिटेशन आंख बंद करके करवाया। डोंट डी वैल्यू इट वर्ड इन दीज वर्ड्स। मैं होश आवाश में बोल रहा हूं, सोच समझ के बोल रहा हूं। ये आयुष्मान ह्यूस्टन में जो ईश्वर उपासना आपको सिखाई जा रही है, यदि कोई भी आप में या दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरे पास आए कि भाई साहब भारत को हम बहुत अच्छा पवित्र पुण्य भूमि मानते हैं, मैं भी मानता हूं, आज मेरे पास कोई आए कि मैं 2 महीने के लिए भारत जा रहा हूं, वहां मैं किसी से ईश्वर उपासना सीखना चाहता हूं, तो ऑनेस्टली माई रिप्लाई विल बी, पर्सनली आई डोंट नो एनीबडी हु कैन टीच यू ईश्वर उपासना। ये आज का थिंग्स आर सो एक्सटिंक्ट, द रियल ट्रू नॉलेज इज रियली एक्सटिंक्ट। आप इसको इतना डिवैल्यू मत कीजिए। जो ईश्वर उपासना यहां 10-15 मिनट में आपको सिखाई जा रही है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इस दुनिया में कोई व्यक्ति, कम से कम मैं नहीं जानता, होंगे जरूर लेकिन मैं नहीं जानता, नॉट टू माई पर्सनल नॉलेज, कोई आपको ये चीज नहीं सिखा सकता है जो यहां सिखाई जाए। प्लीज वैल्यू इट, ट्राई टू एब्जॉर्व इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। 4 सप्ताह में ये होगा, और फिर रोज 10-15 मिनट फादर्स डे के दिन ये प्रण कीजिए कि मैं भी 15 मिनट उस परमपिता परमात्मा को ये डिवोट करूंगा। आइए परविंदर जी।